आठ बजे तक स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्लास का जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय ओम विष्णुपाल परमहंस परिराज कचार्य विष्णु पर श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की निताय गोपेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से नवम स्कंध अध्याय 15 भगवान का युद्धावतार परशुराम। आज इस अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। पहला चार श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं है। पांच श्लोक छठा पांच और छह दोनों एक साथ में उसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी के थोड़े से हैं, इसलिए मैं स्वयं पढ़ रहा हूँ, खुद पढ़ रहा हूँ कि चार नंबर पांच नंबर श्लोक तक, बाद में छह नंबर आवृत्ति करेंगे। श्री बादरायणी रुवाच एलस्य च उर्वशीर्गर्भात् तडासन्नात्मजा निप आयु श्रुतायु सत्यायु रयो अथ विजयो जयः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, पुरुरवा ने उर्वशी की गर्भ से छह पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय तथा जय। श्रुतायोर्वसुमान पुत्रः सत्यायोश्च सुतंजय, रयस्य सुत एकस्य जयस्य तनयो अमितः। धीमस्तु विजय स्याथ कांचन यत्र कस्ततः तस्य जन्नु सुत गंगं गंडुषी कृतः यो अपिवत्। सुतायु का पुत्र वसुमान हुआ, सत्यायु का पुत्र सुतंजय हुआ, रय का पुत्र एक था, जय का पुत्र अमित था और विजय का पुत्र भीम हुआ। भीम का पुत्र कांचन, कांचन का पुत्र होत्रक और होत्रक का पुत्र जन्नू था, जिन्होंने एक ही घूंट में गंगा का सारा पानी पी लिया। जन्नुस्थु पुरस्तस्याथ बलात्मजो अजक ततः कुशः कुशस्यापि कुशाम्भुस्तनयो वसुः। कुशनाभश्च चत्वारो गाधिरासीत् कुशाम्भुजः। जन्नु का पुत्र पुरु था, पुरु का बलाक, बलाक का अजक और अजक का पुत्र कुश हुआ। कुश के चार पुत्र हुए जिसके नाम से कुसाम्भुज, तनय, वसु तथा कुशनाभ। कुसाम्भु का पुत्र गाधी था। तस्य सत्यवतीं कन्यां रुचिको अजाचतः द्विज वरं विसदृशं मत्वा गाधीर भार्गव अब्रवीत। ये दोनों श्लोक साथ में है लेकिन लास्ट श्लोक लिखा है। एकत श्याम कर्णानां हयानं चंद्रवत् साम सहस्रं दियतां शुल्कं कन्याया कुशिका वयम् एकतः श्याम कर्णानां हयानां चंद्रवर्षसां सहस्रं दियतां शुल्कं कन्याया कुशिका वयम् एकतः श्याम कर्णानां हयानां चंद्रवर्चसां सहस्रं दियतां शुल्कं कन्याया कुशिका वयम् तो ये दोनों श्लोक पांच और छह के अनुवाद एक साथ में है। अनुवाद, गाधी के एक पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती था, जिससे विवाह करने के लिए ऋचिक नामक ब्रह्मर्षि ने राजा से विनती की, किंतु राजा गाधी ने इस ब्रह्मर्षि का अपनी पुत्री के लिए अयोग्य पति समझकर उससे कहा, महोदय मैं कुशवंशी हूँ, क्योंकि हम लोग राजसी क्षत्रिय है, अतएव आपको मेरी पुत्री के लिए कुछ दहेज देना होगा, अतः आप कम से कम 1000 ऐसे घोड़े लाएं जो चांदनी के तरह उज्जवल हों और जिनके एक उल्टा या सीधा काला कान हो। तात्पर्य, राजा गाधी का पुत्र विश्वामित्र हुआ, जो ब्राह्मण तथा क्षत्रिय का मिश्रित रूप था। विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। ऋचिक मुनि के साथ सत्यवती का विवाह होने से उनका जो पुत्र होगा वह क्षत्रिय होगा। राजा गाधी ने कहा कि वह अपनी पुत्री की शादी तभी कर सकता है जब उसकी यह असाधारण मांग पूरी हो जाए। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददापि सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणालिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः वदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तस्य सत्यवतीं कन्यां ऋचिको अजाचतः द्विजः वरं विसदृशं मत्वा गाधीर्भारव अब्रवीत्। एकतः श्यामकर्णानां हयानां चंद्रवर्चसां सहस्रं दीयतां शुल्कं कन्याया कुशिका वयम्। गाधी के एक पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती था, जिससे विवाह करने के लिए रुचिक नामक ब्रह्मर्षि ने राजा से विनती की, किंतु राजा गाधी ने इस ब्रह्मर्षि को अपनी पुत्री के पुत्र के लिए अयोग्य पति समझकर उससे कहा, महोदय मैं कुशवंशी हूँ, क्योंकि हम लोग राजसी क्षत्रिय है, अतः आपको मेरी पुत्री के लिए कुछ दहेज देना होगा, अतः तो आप कम से कम 1000 ऐसे घोड़े लाएं जो चांदनी की तरह उज्जवल हो और जिनके एक उल्टा या सीधा काला कान हो, एक कान काला हो, हैं? यहाँ पर उल्टे बात है, दहेज कौन देता है? जो कन्या शादी बने जो शादी होता है दहेज कौन देता है, हैं? कन्या के पिता दहेज देता है कन्या के साथ, कुछ अच्छे गहने साड़ी और जो कुछ देता, साथ में कुछ दासियां भी जाते हैं। ये राजा है, लेकिन ये इनको इच्छा नहीं था कि उनको अपने पुत्री देने के लिए, किनको हैं? रुचिक मुनि को, जो चाहते थे इनकी कन्या को शादी करने के लिए। जैसे पहले भी एक ऐसा ही व्यक्ति मथुरा में रहते थे, वो भी जमुना जल में तपस्या करते थे वृंदावन में, वो सौभरी मुनि, सौभरी मुनि का आश्रम आज भी है, सौभरी मुनि जमुना के जल के अंदर डूब कर वहाँ तपस्या करते थे, मछलियों के बीच में बैठकर तपस्या करते थे। गरुड़ जी आते थे मछली खाने, और कई हजार साल तपस्या करता, लेकिन हटा तो उसके मन में देखे मैंने गरुड़ जी के प्रति अपराध किया, क्योंकि गरुड़ जी मछली पकड़ कर खाते थे, उसको ममता हो गया था मछलियों के परिवार में, तो गरुड़ जी को मना किया, इधर आकर मछली मत पकड़ो, यहाँ से खाना नहीं। गरुड़ जी क्यों सुने, भगवान विष्णु की वाहन है तो उनकी आहार है तो खाते थे। लेकिन एक बार गरुड़ जी ने आए और एक मछलियों की जो सरदार था सबसे बड़ा मछली को उठा, तो बड़ा गुस्सा हो गया, कौन? सौभरी मुनि गुस्सा होकर कहे कि तुम चाहे विष्णु की वाहन क्यों न हो, लेकिन यदि दोबारा तुम्हें यहां पर आकर मछली पकड़ेगा तेरा मृत्यु हो जाएगा। गरुड़ जी वैसे चाहते तो अभी सबको टाल सकते थे, लेकिन क्योंकि वो महान भक्त था, भगवान विष्णु की ही वाहन था, इनको कैसे मृत्यु हो सकता है। लेकिन सम्मान देने के लिए ऋषि को, ब्राह्मण को, तो उन्होंने छोड़ दिया था स्थान आने के। लेकिन गरुड़ के चरण में जो अपराध किए उसके परिणाम भोगना पड़ा, किनको? सौभरी मुनि को। तो मछलियों के ऊपर ममता हो गया था, और मछलियों के बीच में देखी कि एक जो संभोग देखकर, जो पुरुष मछली और मादा मछली दोनों में संभोग देखकर, संभोग करते मछली को देखकर उनके मन में भी इच्छा प्रकट हो गया। वैष्णव अपराध का ये सबसे पहला जब कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है, अपराध करने पर तुरंत संसार को भोगने की इच्छा प्रकट हो जाएगी। सौभरी मुनि कितने दिनों से तपस्या करते थे पानी के अंदर, कभी कभी इनकी कई हजार साल बीत गया था, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन आज अपराध के गरुड़ जी के जैसे महान वैष्णव को साधारण समझकर उनको अभिशाप देना शुरू कर दी। वैष्णव कभी किसी को अभिशाप नहीं देते हैं, वैष्णव की कभी सहनशील है। सुना गति सुनी के न करो रोपी सही सुना, अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। गरुड़ जी सहन करके वो अभिशाप दिए, गरुड़ जी कुछ प्रतिकार नहीं किया, लेकिन वो चुपचाप चले गए, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया उनको भोगना पड़ा। अब उन्होंने भी ऐसा ही तुरंत पानी के अंदर से निकले और आए चले सीधे कहां, मथुरा के राजा थे मानधाता, राजा मानधाते के पास में गए, उनकी कितनी पुत्री थे, 50 पुत्री थे, और बस उनके राजा को कहे कि मुझे पुत्री दे दो शादी करने के लिए, मैं भी गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ, दे दो। तो राजा ने भी इसी प्रकार, जिस प्रकार यहाँ पर ये कौन महाराज? नहीं महाराज रुचिक नहीं, रुचिक तो रुचि है, महाराज गाजी नहीं। समझ गए कि ये जो रुचिक मुनि आए सामने, ये एक ब्राह्मण है, ऋषि ऋषि है, कई जो दिनों से तपस्या करने के प्रांत शरीर से वो अस्थि कंकाल सार हो जाता है, हड्डी सब दिखाई पड़ता है, गाल घुस जाता है, दाढ़ी बाल ये सब जटाजुट, ये एक राजकन्या को शादी करने के लायक नहीं होते हैं। वहां पर भी इस प्रकार वो महाराज मानधा पर भी सोचा था कि ये जो सोभरी मुनि पानी के अंदर हजार कई हजार साल निकल कर आए तो शरीर में पूरा सिकुड़ी, ऐसे पूरे शरीर सिकुड़ गया था चमड़े से, और सब हड्डी देख रहा था, गाल घुस गए थे, दाढ़ी बाल, और ये सोच रहे कि राजकन्या को शादी करेंगे। तो वहां पर भी वो राजा ने वैसे कहा ठीक है महाराज, क्यों जानते थे कि महान योगी है, हो सकता अभिशाप देकर सर्वनाश कर देगा मेरा। ये भी भय रहता है ब्राह्मणों के प्रति, क्षेत्रीय राजाओं की भय रहता कि अभिशाप न दे, अभिशाप देगा तो सर्वस्व चले सर्वनाश कर सकते, अभिशाप दे सकते योग शक्ति की बात। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हमारे 50 लड़की हैं, आप अंदर में जाइए, यदि कोई लड़की आपको स्वेच्छा से आपको शादी कर लेगा तो सही है, मैंने कुछ मना नहीं करता, लेकिन क्या कर सकता हूँ, वो अपने अपना इच्छा है स्वेच्छा से शादी करने का, पति को चुनने का, तो आप जाइए अंदर में जो आपको चुन लेगा। लेकिन उनकी भाव को समझ गए थे कौन, तो भरी मुनि राजा क्या कहना चाहता, अर्थात उनकी लड़की को शादी करने के लायक में नहीं हूँ सोच रहा, अर्थात तो उसके मनोभाव को सोचकर उन्होंने योग शक्ति में ऐसा ही सुंदर पुरुष का रूप बनाए हैं, जिसको देखकर वो अंदर में जो प्रवेश किए तो सारे 50 की 50 लड़की उनको शादी करने के लिए तैयार हो गए, झगड़ने लगे, वो वापस में लड़ाई हो गया कन्याओं की, वो बोला कि नहीं ये पुरुष मेरे के लिए है, मेरे पति मेरे लायक पति है, मैं इसके साथ शादी करूंगा, दूसरे बोले नहीं तुम हटो, तो परस्पर में झगड़ गए, सारे 50 करने 50 को 50 उनको शादी कर लिए, पति रुपये में परम कर लिए, क्योंकि उनके पास में विशेष शक्ति होता है। लेकिन उसी प्रकार यहां पर रुचि के मुनि जब आकर उनके सामने कम इनको महाराज गाधी के सामने अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, उनकी एक बहुत सुंदर कन्या थी, किनकी, महाराज गाधी के, तस्य सत्यवती कन्याम, क्या कन्या का नाम क्या था, सत्यवती, और सत्यवती, और तो उसको रुचि को अजातत दीजा, ब्राह्मण रुचिक मुनि ने आकर कहे कि तुम्हारे जो कन्या है सत्यवती मुझे दान कर दो, कन्या दान किया जाता है, कन्या को दान करते हैं, पितृ दत्त कन्या है, यदि पिताजी स्वेच्छा से किसी कन्या या को दान कर देता है, और राज दत्त भूमि, राजा यदि स्वेच्छा से किसको जमीन देता है, तो कहते कि वो जो दान ग्रहण करता है के लिए बहुत अच्छा सौभाग्य की बात होता है, कन्या को पिताजी अपने स्वेच्छा से दान करना चाहिए, और राजा स्वेच्छा से किसी प्रजा को भूमि देना चाहिए, उसे ऋषि के मुनि ने जाकर माँ के दान दो, तुम्हारा जो कन्या है मुझे दो, क्योंकि मेरे मन में अभी इच्छा प्रकट हुई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए, साधारण ऐसी गृहस्थ ऐसे ही इच्छा प्रकट हो जाती भोगने की, संसार को भोगने का इच्छा जैसे सोगोरी मुनि के मन में भी प्रकट हुआ, जब कभी हम किसी अपराध करते हैं, नहीं तो जब ब्रह्मचर्य जीवन बिताता है, ब्रह्मचर्य धारण करके बस कई सालों से रहा है, अनिष्ठिक ब्रह्मचारी है, तो उसके मन में कैसे पैदा होता है, कभी हम देखते कि 50 पूरे लॉन्ग टाइम चले जाता है, 50 उम्र भी हो जाते, 50, 55, 60 साल में भी फिर व्यक्ति शादी कर लेता है, अर्थात संग दोष तथा कहीं ना कहीं मैंने किसी के चरण में अपराध होता है, हम जो किसी गृहस्थों को चर्चा करते हैं निंदा करते हैं, तो वो गृहस्थ आश्रम है अपने पत्नी के साथ बच्चों के साथ देखकर हमारे मन में कुछ अहंकार आ जाता है, उनको निंदा करना शुरू करते हैं, उनकी चर्चा करना शुरू करते हैं, ब्रह्मचर्य के काम नहीं गृहस्थों की चर्चा करें, गृहस्थ अपने पता कैसे रहता है घर में पत्नियों के साथ मन में बच्चों के साथ में उसकी तरफ देखना बा उनकी चर्चा करना इसका काम नहीं है, कभी कभी ब्रह्मचर्य लोग निंदा करते हैं, किनका, गृहस्थों की, गृहस्थ आश्रम गृहस्थ को निंदा करने लगे क्या है, और उनको कुछ भी हम मन में से बुरी भावना लाते हैं, उनको गृहस्थ देखने नहीं, हम तो उनकी तरफ देखेंगे नहीं, चले दूसरे तरफ हैं, बात तो वैष्णव के अवश्य उनको ब्रह्मचर्य को ग्रहस्थों से ज्यादा मिलजुल करना है शास्त्र के निर्देशन के आधार पर जैसे तरह बचना चाहिए, लेकिन साथ साथ वैष्णव सदाचार के आधार पर व्यवहार सही रखें, बातचीत करना, कोई प्रणाम करने वैष्णव जो प्रणाम कर रहा था आपको भी प्रणाम करना। तो इस प्रकार जब आप नहीं करते हैं ये वैष्णव अपराध हो जाता है, तभी फिर शादी करने की इच्छा प्रकट हो जाती है गृहस्थ जीवन। हमें भी गृहस्थ में प्रवेश करना है, देखते हैं कि ये गृहस्थ लोग जो है कितने आनंद में रहते, सोचने फिर लगेगा कितने आनंद में, बहुत सुंदर फ्लैट है, पत्नी है, बच्चे हैं, बैंक बैलेंस है, कहीं भी चाहते तो कार में अपने घूमते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, अपनी इच्छा हो गया गांधी जयंती जैसे कहीं भी घूमे। तो ये सब देखते देखते मन में इच्छा प्रकट होती है। जब हम इनकी निंदा करना चाहते हैं, उनके कमियां को देखना चाहते, फिर आस्ते आस्ते वही व्यक्ति जो गृहस्थ को निंदा करता है वही गृहस्थ बनी जाता है बात में। तो इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए कि किसी की निंदा न करें, सतांग निंदा नाम अपराध के सबसे पहला अपराध है। ये नहीं कि कोई भेष पहनने से कोई ब्रह्मचारी भेष पा कोई गृहस्थ ऐसे भेष के अनुजाई कोई संत कहा जाता है, कोई सन्यासी चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि गोपी भरतु पद कमलयो दास दासानु 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 10,000 टाइम रिड्यूस मोर। वैष्णव तो कोई भी हो सकता है, इसमें किसी वर्ण आश्रम की कुछ लेना देना नहीं है। तो इसको जानते हुए हमें बड़े दैन्यता के साथ रहना चाहिए, नहीं तो हमें भी कभी अपराध कर बैठेंगे किसी वैष्णव के चरण में, फिर हमारे भी ऐसे गति होगा, फिर संसार को भोगने की इच्छा प्रकट हो जाता है संसार को भोगने। कितने बड़े जोगी होने से जोगी योग शक्ति के माध्यम से कोई लस्टी डिजायर को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये जो शत्रु है काल जैसे हम भी चर्चा किए थे कि ये जो शत्रु है ये किसी की बस में नहीं होता है। विश्वामित्र इतने बड़े जोगी है, वो भी महान जोगी था, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा घुंघुर शब्द से ही बस वितरित हो गया, फिर उसके मन में विशेष डिजायर पैदा हो गया। तो इसलिए बड़े सतर्कता से रहना चाहिए। वैष्णव किसी भी वर्ण आश्रम में रहकर भी भगवान के महान भक्त परमहंस बन सकता है। ये भक्तिवर ठाकुर ने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी गृह किस प्रकार जीवन को निभाया कैसे ही, उनकी पुत्र कौन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मोनास्टिक ब्रह्मचारी थे, वो भी परमहंस थे, भक्तिवर ठाकुर भी परमहंस थे। कोई दर्शन का है इसमें, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर भी परमहंस स्थिति को प्राप्त कर सकते, कोई गृहस्थ आश्रम में रहकर भी उस स्थिति को आ सकता है। लेकिन जब हम निंदा करना शुरू करेंगे दूसरे एक दूसरे का, एक दूसरे को श्रेष्ठ मानेगा, तो फिर हम वैष्णव व्रत करेंगे तो भजन में मन नहीं लग सकता है, फिर मन इधर उधर जाएगा। तो इसलिए सभी आश्रम अच्छा है, लेकिन हम उसी आश्रम में रहकर हमारा जो असली कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना, ये आश्रम का अर्थ किया हम ये कहते ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, दानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम कि वह विप्र किवा न्यासी शूद्र के नाय जेहु कृष्ण तत्व बेता से ही गुरु है। इतने महाप्रभु की निर्देशन है, कोई भी किसी आश्रम महाप्रभु कृष्ण कथा को सुनने का जो बोलने का अधिकारी किसको माना, राय रामानंद शूद्र थे और गृहस्थ थे, लेकिन महाप्रभु ने उन्हीं की मुख से कृष्ण कथा को श्रवण किया। और दूसरे भी उनके जो मुख्य सहचर थे दूसरे थे बैरागी कौन, स्वरूप दामोदर गोस्वामी महान बैरागी शिरोमणि है, वो भी सन्यासी सन्यास एक प्रकार सन्यास लिए थे बनारस में, लेकिन क्षेत्र सन्यासी रूप में रहे पुरी में और उनके सेक्रेटरी थे। ये भी कृष्ण कथा इन भी कृष्ण के संबंधित गीतों को गाते थे, बहुत सुंदर गीत गाकर चैतन्य महाप्रभु को सुनाते थे और दूसरे कृष्ण कथा सुनाते थे कौन, राय रामानंद दोनों रहते थे। रामानंद र कृष्ण कथा स्वरूपे गान विरह वेदनाते प्रभु राखये परा, रामानंद राय की कृष्ण कथा और स्वरूप गान दामोदर गोस्वामी की कृष्ण की गान कृष्ण कथा कृष्ण संबंधित जो गाना है जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद से बा चंडीदास विद्यापति के पद्यावली से या कृष्ण कर्णामृत से उन्होंने गाकर कुछ सुंदर गीत गाकर वहां पर सुनाते थे और दूसरे कृष्ण कथा कहते थे। लेकिन मुख्य बात है कि हम परस्पर मिलजुल के ही भगवान की सेवा में रहें। मुख्य लक्ष्य क्या है? भगवान की प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए समस्त इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाना है। इसलिए प्रभुपाद ने संस्था बनाया इस क्रम में, इसमें सभी मिलजुल कर रह सकते, पूरे विश्व इसमें निवास कर सकता है। ऐसा ही संस्था बनाया गया जिसमें पूरे विश्व निवास कर सकता है। लेकिन प्रत्येक आश्रम में कुछ नियम है, जो जिस आश्रम में रहता तो उन नियमों को अवश्य भी पालन करें, उन नियम का आधार पर चलें। सदगुरु के निर्देशन में साधु शास्त्र गुरु, जो कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए तीन आवश्यकता है, कौन सा? साधु शास्त्र गुरु, तीनों को बैलेंस रख के चले आगे हैं। कैसे चलना है? हम ब्रह्मचारी है, हमारे लिए क्या नियम है? शास्त्र कहता है क्या नियम है ब्रह्मचारियों के लिए? कैसे रहना, कैसे उनके चाली चलन व उनकी गतिविधि कैसे शास्त्र में वर्णन की गई है? ब्रह्मचारी है तो फिर उनको आठ प्रकार के नियम पालन करना है, स्त्रियों से कैसे दूर रहना है। तो माता को भी जानना चाहिए कि ब्रह्मचारी है तो उसको उसकी कोई अच्छा ब्रह्मचर्य प्रकृत में, यदि कोई भक्ति में आगे बढ़ता है, कोई अच्छी वरिष्ठ माता जी है तो अच्छे ब्रह्मचर्य देखते हैं तो उसको खुश होता है, वो प्रशंसा करता है, अच्छे बोलते हैं अच्छे ब्रह्मचर्य, वो जानते हुए उससे भी दूर रहता है, उसके साथ ज्यादा मिलजुल करना व उनसे बातचीत। ब्रह्मचर्य के काम है माता माताओं से बात ना करें, ज्यादा बात ना करें, दूर रहे। इतने मन में कृष्णदास कविराज को सभी कहते कि यदि यदि प्रीति रखी बारे चाहो गौरांग रसने छोटा हरिदास कथा थाके जेन मने। एक वैरागी व्यक्ति के लिए महाप्रभु ने कितने स्ट्रिक्ट है, उसको ध्यान में सत्संग चिंतन करो, उसको सोचो छोटा हरिदास के कथा है। चैतन्य महाप्रभु लीला में दो हरिदास आते, एक ब्रह्म हरिदास नामाचार्य हरिदास ठाकुर और दूसरा छोटा हरिदास। छोटा हरिदास भी क्षेत्र सन्यासी थे, रहते थे महाप्रभु के पास में, आते थे शाम को कुछ गीत गाकर सुनाते थे कुछ भी, वो भी बहुत बहुत अच्छा गायक थे, गाने में बड़े सुनीपूर्ण थे, और आते थे शाम को कुछ गाकर भी महाप्रभु सुनाते थे, उनकी सेवा था। लेकिन एक बार वो पुरी में और एक वैष्णव रहते थे, उनके नाम था भगवान आचार्य, वो भी महान वैष्णव, कृष्ण लीला में वो द्वादश गोपाल में से एक गोपाल माने जाते, साक्षरस के भक्त थे और नित्य सिद्ध पार्षद थे गौरांग महाप्रभु के। इसलिए महाप्रभु को कभी कभी वो अपने घर में खाने के लिए प्रसाद के लिए बुलाते थे, स्वयं कुकिंग करके बुलाते थे, महाप्रभु उनके निमंत्रण रक्षा करके जाते थे उनके घर में खाने के। तो एक बार भगवान आचार्य को इन्वाइट किया चैतन्य महाप्रभु को, और लेकिन छोटा हरिदास को बुलाया था थोड़ा आकर आशीष करने के लिए, कुकिंग में थोड़ा मदद करने के लिए, छोटा हरिदास गए उनको मदद करने। लेकिन इन्होंने देखा कि अपने घर में अच्छी क्वालिटी के चावल नहीं है, और अच्छी क्वालिटी के चावल कहाँ पर हैं? महाप्रभु की अनन्य भक्त जब और एक भक्तिमती माता जी थी, उनके नाम थी माधवी दास जी, पूरी में गौरांग महाप्रभु की जितने भी भक्त रहते हैं वो उनमें थ्री एंड हाफ अंतरंग माने जाते थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, राय रामानंद, सिक्खी माई की बहन माधवी दास जी। माधवी दास जी भी बहुत उन्नत भक्तिमती स्त्री थी, वैष्णवी थी, इसकी पूर्व लीला में कृष्ण लीला में वो राधारण की दासी थी, सर्वेन बहुत उन्मती उन्न बहुत नित्य सिद्ध भक्तिमती वैष्णवी थी, और उन्होंने अच्छी क्वालिटी की बहुत चावल बनाकर अपने घर में रखी, बहुत एक क्वालिटी के चावल, भगवान आचार्य को पता था। तो उन्होंने उनको बोले कि हरिदास तुम जाकर माधवी दासी से एक मान चावल ले आओ, मान मानी वो मापने के लिए होता है, ऐसे डब्बा होता है, उसमें 900 ग्राम लघु होगा था, पूरी में इसको मान नहीं, उड़िया में इसको उड़ीसा में मान कहते हैं, किलो होता तो ये 1000 ग्राम होता है, वो 900 ग्राम लगभग होता है, तो मान एक मान चावल ले आओ। महाप्रभु के लिए मैं कुकिंग करके बहुत अच्छे और मैं खिलाऊंगे आज, मेरी इच्छा है। तो उन्होंने गए मांगने के लिए, गए छोटा हरिदास कहने पर, जाकर माधवी दास जी बड़े प्रसन्न हुई जब कि उसकी जो चावल है महाप्रभु के लिए रंधन किया जाएगा, महाप्रभु की सेवा में लगेगा। तो उन्होंने दिए, एक मान चावल दिए, लेकिन चावल देने के बाद थोड़ा सा वो खड़ा होकर, एकांत में कोई नहीं थे, माधव विदासी थे और वो थे छोटा विदास, दोनों थोड़ा कुछ बातचीत, दुख सुख कुछ बातचीत हुए और उसके बाद फिर वो वापस आए, चावल दे दी भगवान आचार्य को। समय पर कुकिंग हो गया और भगवान आचार्य ने कुकिंग करके अन्य प्रकार के व्यंजन, सब प्रकार के सब्जियां, दाल, सब बहुत प्रकार के बनाए थे और सभी केले के पत्ते के ऊपर रखकर तुलसी मंजरी डाल के बड़ा भोग लगाकर रख के रेडी रखे थे किन के लिए। महाप्रभु ठीक समय पर स्नान करके पधारे, समुद्र स्नान करके वहां पर दोपहर के समय पधारे और महाप्रभु ने पहले इतने सुंदर प्रसाद को देखकर बहुत प्रशंसा की, तुम धन्य हो भगवान आचार्य, आज तुम ऐसे ही अर्ण व्यंजन भगवती कृष्ण को, जगन्नाथ को अर्पण किया, तुम बहुत भाग्यवान हो। लेकिन ये अर्ण से इतनी सुगंधित अर्ण है, इतनी सुंदर अर्ण देखने में लोभ उत्पन्न हो रहा है अर्ण प्रसाद के प्रति, लेकिन इसी सुंदर अर्ण प्रसाद तुम भगवान को अर्पण किए, तुम धन्य धन्य हो, लेकिन लाया कहां से इतनी सुंदर अर्ण, कहां से लाया, तुम्हारे घर में था ना और कहीं से। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको माधवीदासी से मंगवाया, तो माधवीदासी से तो कहीं कौन लाया जाकर, अभी छोटा हरिदास सोचता कि मेरे नाम जब सुने के महाप्रभु मैं जाके लाया तो खुश होंगे, तो कह के छोटा हरिदास भेजा था वही लेके आया। महाप्रभु ने ये नाम सुनते कि छोटा हरिदास जाकर लेके आया तो गंभीर हो गए, कुछ भले नहीं, चुप शांत पर गंभीर रूप में उसके बाद पर बातचीत नहीं की थी, प्रसाद को ग्रहण किए, ग्रहण करके सीधे हाथ धोकर सीधे डायरेक्ट चले गए अपनी कुटी में, गंभीरा में गए और गोविंद को कहे आज से ये छोटा हरिदास के लिए मेरे गेट बंद है, दर्जा बंद है, यहां नहीं छोड़ना उसको अंदर, मेरे साथ इसका कोई संपर्क आज से नहीं है। कुछ कारण भी बताए नहीं, भी गंभीर थे, उनको पूछने के लिए भी कोई इसकी हिम्मत नहीं हुआ। महाप्रभु थे तो शाम के समय हर दिन का ड्यूटी जैसे लगाता था, छोटा हरिदास आज भी आया और आज भी आया तो क्या कहे, गोविंद ने कहा कि अंदर जाने के आपको अधिकार ने मना है, महाप्रभु ने मना किया, आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्या कारण, क्या न कारण क्या पता ही नहीं, हमें पूछने के लिए हमारी हिम्मत नहीं है, बहुत गंभीर थे, मैं नहीं पूछा, लेकिन आपको नहीं जा सकते अंदर, मना है। तो छोटा हरिदास बड़ा दुख होने लगे, तो सरद दामोदर गोस्वामी को पूछे जाकर, सरद दामोदर गोस्वामी पूछे, बोले कि नहीं तो वापस है, लेकिन प्रत्येक दूसरा दिन गया फिर मना है, तीसरे दिन गया मना है, नहीं अंदर नहीं जा सकते हो। सरद दामोदर गोस्वामी जाकर पूछे महाप्रभु को क्या हुआ, छोटा हरिदास को क्यों मना है, तो वो खाना भी नहीं खा रहा है, उपवास है, बहुत रो रहा है, तो उसको मना क्यों आप किए आपके पास आने के लिए। महाप्रभु ने कुछ बोले नहीं, केवल कहे कि बैरागी हैया करे स्त्री संभाषण, देखी ते न पारी आमी तहार बदन। बैरागी है, वैराग्याश्रम में है, लेकिन एकांत में जाकर स्त्री के साथ बातचीत करता है, हम इसके मुख भी नहीं देख सकता और कुछ नहीं। फिर शांत हो गए, कभी सरोज ने थोड़ा हास मिल के कोई वो ऐसे मिस्टेक कर लिया, कभी एक इस टाइम माफ कर देना चाहिए, महाप्रभु के नहीं माफी नहीं, ऐसे ही व्यक्ति की माफी नहीं है कि महाप्रभु अंतर नहीं, वो एकांत में एक स्त्री से बातचीत कर रहा था, क्या उसकी माइंड में था, क्या था वो महाप्रभु जानते, मना कर दे नहीं। उसकी बात में अन्य पार्षद लोग, राय रावण भी और जितने भी पार्षद थे यहां तक के, सभी महाप्रभु के जितने भी पार्षद सब लोग आते एक एक करके रिक्वेस्ट के सभी लोग, लेकिन महाप्रभु किसी के रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं किया, बोले ऐसे ही बाताशी जो बैरागी आश्रम धारण करके फिर भी स्त्रियों से बातचीत करता, उसको मैं कभी उसके मुख नहीं देख सकता। सभी लोग सोचे कि अच्छा परमानंदपुरी को भेजते हैं, परमानंदपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, गौरांग महाप्रभु परमानंदपुरी को अपने गुरु के सब मानते थे, क्योंकि माधवेंद्रपुरी के शिष्य अपने उनके महाप्रभु की गुरु ईश्वरपुरी उनकी गॉड ब्रदर होते थे, इसलिए उद्धव के अवतार थे परमानंदपुरी, महाप्रभु के साथ नहीं रहते थे पूर्व लीला में वो उद्धव थे, तो इसलिए महाप्रभु बड़े उनको सम्मान करते थे। और सभी भक्त मिलकर कहे कि आप थोड़ा जाकर बोलिए भक्त को, मैंने रो रहा है, 7 दिन बीत गया, अभी तक कुछ खाता नहीं है पीता नहीं, और दिन रात रोता है, महाप्रभु इसको बारण किए, जाने के लिए मना उनके पास में, आप कुछ कीजिए। परमानंदपुरी आए, परमानंदपुरी आकर महाप्रभु को, महाप्रभु उनको देखते ही तुरंत प्रणाम किए, साष्टांग दंड अपने गुरु ज्ञान से इनको प्रणाम किए, और उनका आसन भी बैठने के लिए, कैसे आगमन हुआ, मैं क्या सेवा आपकी कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या आदेश है, महाप्रभु पूछे। तो उन्होंने कहे कि ये सारे सभी भक्त मिलकर मुझे आपके पास में ले जाए, जितने भी वैष्णव पुरी में सभी वैष्णव मिलकर मुझे आपके पास भेजे हैं, तो छोटा हरिदास का जो केस है, आप कृपा करके इस टाइम इसको क्षमा कर दीजिए, बेचारा बहुत पश्चाताप कर रहा है, बहुत रो रहा है, खाना पीना भी छोड़ दिया है। तो महाप्रभु ने गोविंद को बोले, गोविंद मेरा कमंडोलू लोटा दंड कमंडोल पकड़ो, और हमारे लिए और जागा रहने के लायक नहीं, चलते वाला नक है कुछ बोले है, हम आप कहते परमा आप यहीं पर रहिए, पूरी गोसाई आप भक्तों के साथ में यहीं रहिए, मैं चलता हूँ कहाँ वाला नक। ये बड़ा हस्तचकित होगी, तुरंत ही हाथ पकड़ के महाप्रभु बड़े शब्द में बोले, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये भक्त लोग मुझे भेजा था, केवल आप तो स्वतंत्र ईश्वर हो, आप स्वतंत्र भगवान, आपकी इच्छा जो आप वो कर सकते हैं, मैं तो केवल सलाह देने के लिए आया था, सारे भक्त लोग जो बोले, लेकिन आप ही रहिए। बहुत आश्चर्य में महाप्रभु ने फिर पकड़ के नहीं सर परमानंदपुरी पकड़ के फिर महाप्रभु को अपने आसन पर बैठा है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं थी, नहीं किसी की बात महाप्रभु नहीं सुनी। बैरागी हैया करे स्त्री संभाषण, देखिते न पारियानी तहार बदन, मैं तो मुख नहीं देख सकता। जो ब्रह्मचारी सन्यासी है उनको कितनी कठिन अड़ है, किनके महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, लेकिन माताएं जाते थे तो इनको कैसे प्रणाम करते थे, कितने दूर से, लगभग 20 हाथ दूर से, 20 हाथ दूर से माता, बात करता तो दूसरी बात है, गौरांग महाप्रभु में स्त्री शब्द भी उच्चारण नहीं करते थे, प्रकृति कहते, तो प्रकृति है प्रकृति दर्शन, प्रकृति स्त्री के जब बात कोई शब्द आते कहते प्रकृति, स्त्री भी उच्चारण नहीं करते, वो उच्चारण नहीं करते, तब जाते आप दूर से 20 हाथ दूर से उनको प्रणाम करना, बातचीत करना तो दूर की बात है, इतने महाप्रभु के कठोर माने नियम था। यदि कोई सन्यासी है, कोई ब्रह्मचारी है, कितनी कठोर नैष्टिक ब्रह्मचारी जो है, जो व्रत ले रखा है कि इस जीवन में वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहेगा, भगवान की भक्ति में संपूर्ण जीवन को समर्पण करेगा, काय और मनो वाक्य में भगवत सेवा में संपूर्ण ये जीवन को उत्सर्ग कर देगा। वो श्लोक महाप्रभु में कहते थे, निष्किंचनस्य भगवत भजन मुखस्य पारंपरम जिगीमिश्र भवसागरस्य संदर्शनम विषयिनाम अथ जोषिताम च हा हंत हंत विषभक्षण अभी असाधु 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 साधु नहीं है। एक बार घर बार सब छोड़ दिया है, अब सब छोड़कर भगवान का भजन करने के लिए सब छोड़ के आ गया, और ऐसे ही निष्किंचन भजन करने के लिए जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ त्याग दिया था, और दोबारा फिर संदर्शनम विषय विषय व्यक्ति के संग किया है, और जोशिता स्त्री के संग करने लगा, तो उस व्यक्ति को तो जहर खाकर शरीर त्याग देना था, वो साधु नहीं है, वो असाधु है। ये महाप्रभु के नियम है ब्रह्मचारियों के प्रति, ब्रह्मचारी को बड़ा कठिन बा विशेष रूप में जो रैष्टिक ब्रह्मचारी रहना चाहता सन्यासी आश्रम में बड़े कड़क नियम है उनके लिए। लेकिन गृहस्थ जो है, गृहस्थों के लिए भी नियम है महाप्रभु के, जो सच जो गृहस्थ थे सर्व मोटा करते गृहस्थ थे, रामानंद राय गृहस्थ थे, महान वैष्णव वो भी महाप्रभु के जो पार्षद है, तो लेकिन महाप्रभु उनके लिए कुछ अलग नियम रखे, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में रहने पर भी ये नहीं कि हम स्त्री के साथ संग कभी भी करें, मैथुन के लिए केवल मैथुन आनंद लेने के लिए स्त्री संभोग नहीं है, गृहस्थ आश्रम केवल एक कृष्ण भावना भावी संतान को जन्म देने के लिए है, गर्भाधान संस्कार के सारे नियम को ठीक ठीक से पालन करना, शास्त्र में बता दिया कैसे गर्भाधान संस्कार होता है, तेरा मेरा काजी क्या करेगा, तेरा मेरा राजी क्या करेगा काजी, जो प्रिंसिपल चल रहा ना वो वैदिक संस्कृति नहीं है, है? पितृदत्त कन्या, पिताजी दान करना चाहिए कन्या को, तो ऋषि के मन की इच्छा हुआ तो आग्रह प्रार्थना कर रहे हैं, आप कृपा करके आपका कन्या मुझे दान कीजिए। ये नहीं कि वो गुप्त भाव से इधर से उधर से इसको पटाने के लिए कोशिश करने लगे, किसको? कन्या को। ये जोगी है, उनके पास में कई सिद्धियां हैं, हैं? कोई सिद्धियां हैं, कोई जो जोगी होते हैं उनके पास सारी सिद्धियां रहती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि सब जानते, तो चाहता तो किसी तंत्र मंत्र सिद्धि के माध्यम से किसी कन्या को भी आयत कर लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। वो आए अपने उनके पिताजी के पास में प्रार्थना कर रहे, कृपा करके आपकी जो एक पुत्री है सत्यवती है मुझे दान कीजिए, मैं इसको अपने पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। ये रीति है, हैं? कन्या को स्वेच्छा से उनके पिताजी माताजी दान करें, किसी योग्य पात्र देखकर उसको दान दें, पितृदत्त कन्या। इसलिए ये नियम नहीं चलना चाहिए, तेरा मेरा राजी क्या करेगा काजी, यही से ब्रेक हो गया नियम। प्रारंभ से वो देखने लगेंगे दोनों दो दोनों को परस्पर, केवल लस्टी डिजायर में एक दूसरे में आकर्षित होते हैं, आकर्षित होने के बाद तो वो तो फिर लव लेटर लिखेंगे, ये बोलेगा तुम चंद्रमुख है, तुम चंद्रमुखी है, बहुत कुछ सुंदर पत्र लिखेगा, कितनी कल्पना जल्पना चलेगा, और पहले तो चंद्रमुखी, शादी करने के बाद फिर वही सूर्यमुखी हो जाती है, और एक दो बच्चे होने के बाद फिर ज्वालामुखी बन जाती है, फिर झगड़े चलता है, कितना डिमांड है उसके, आएगी ये दे चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो बेचारा परिश्रम कर करके धन कमाएगा लाएगा, है? इसलिए प्रभुपाद ने कहते थे कि ये जो है स्त्री और धन दोनों ये कैसे हैं, दिल्ली की लड्डू जैसे हैं। दिल्ली की लड्डू क्या, मैं तो पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद कहते कि दिल्ली की लड्डू जो है वो पछताता है, जो नहीं खाया वो भी पछताता है। लेक्चर में कहते हैं, मैं सुना कि ये और कहीं सुना, लेकिन प्रभुपाद ने कहते लेक्चर में कहते प्रभुपाद, दिल्ली का लड्डू जो खाया वो पछताता, जो नहीं खाया वो भी पछताता है। स्त्री और धन जिसके पास में है वो भी बेचारा दुखी है, शादी कर लिया था और कितनी डिमांड स्त्री की बढ़ रहा है, तो है? और उस डिमांड को पूर्ण नहीं कर पा रहा, फिर वो ज्वालामुखी बन रही है, और यहाँ से जो नहीं है वो सोच रहा है कि मेरे को यदि मिल जाएगा धन और स्त्री मिल जाएगा, मैं बड़ा सुखी बन जाऊंगा। भूल जाते हैं साइन बोर्ड, भगवान ने जिन्होंने सृष्टि किया इस संसार को, संसार को सृष्टि करने के उपरांत वहां पर एक बोर्ड लगाया, क्या बोर्ड लगाया, दुखालयम अश्वासतम अनित्यम असुखलोकम। ये बोर्ड देखने भूल जाते हैं हम लोग, संसार में आ गए, हमारा कर्म के अनुजाई आ गए इसी मनुष्य शरीर में, किसी भी शरीर लेकर, लेकिन ये बोर्ड देखना भूल जाते हैं। संसार में प्रवेश करने के समय में गेट में ही बोर्ड लगा गया, ये जो संसार है, भगवान कहे कि ये जो संसार है जहां पर जा रहे हो आप लोग, अंदर में जा रहे, इसका स्वभाव क्या देख लो, इसकी नेचर क्या है, इसमें जाकर दुख की, आप यदि सुख की खोज करोगे सुख नहीं मिलने वाला, क्या मिलने वाला है, दुख है, दुखालयम। और ये शाश्वत नहीं है, अश्वासत संसार है, भुत्ता भुत्ता परियते, इसी प्रकार तुमको जो शरीर मिला ये भी शाश्वत नहीं है, इसका भी नष्ट होने वाला, ये भी नष्ट हो जाएगा, है? तो इसको देखते हुए जानते हुए हम जानना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य प्रकृति में क्या है, कि कैसे इससे निकलना, ना इसमें जकड़ के रहना के लिए नहीं, इसके अंदर से निकालना कैसे, चाहे किसी आश्रम में हम रहते इसे कैसे निकालना, ये हमारा नीति होना चाहिए, कैसे इसका अंदर से निकल जाए। तो इसलिए गृहस्थों के लिए भी आदर सीखना चाहिए, महान आचार्यों से उनको भी महाजन को दिखना चाहिए, 12 महाजन है, 12 महाजन से कुछ हम जैसे कहते कि साधारण तो महाजन जनक से पंथा, 12 महाजन में से कुछ गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, कुछ वैराग्य आश्रम है, हैं? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर बया सकी वयम जमराज कहते शोक। ये 12 महाजन है और इनकी मार्गानुसरण करने के लिए भागवत कहता है, ये भागवत भागवत का जानता है, भागवत और हर्ष जानते हैं, तो इनको अनुसरण करो भक्ति में आगे बढ़ना है। तो जो गृहस्थ है तो गृहस्थों को फॉलो करके, जो आचार्य में थे, द्वादश महाजन में थे, हैं? शंकर जी है, ब्रह्मा जी शंकर जी के परिवार देखिए, शंकर जी के परिवार कौन है, शंकर जी है, पार्वती है, उनके 2 लड़के हैं कार्तिकेय और गणेश, अरे उनकी कितनी विरोधाभास देखिए, शंकर जी के परिवार में, चाहते तो कुछ भी बना सकते के मने वो तीनों लोग की बालिक है उनके समान कौन है, ये तो अन्नपूर्णा देवी बात, तीनों लोग की सृष्टि स्थिति प्रलयकारिणी कौन, दुर्गा देवी, सारे माता जय माता जी सबको उनकी प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं कुछ दो हमको दे दो, दसंग देही धनंग देही रूपंग देही सब उन्हीं से मांगते हैं। अब उनके पिता पत्य जो पति है शंकर जी, अब वो क्या नहीं कर, सब जाते भोलानाथ के पास में सब मांगने के लिए बस दोनों, लेकिन वो दोनों को भी घर बनाए नहीं, कहाँ रहते वो, कहाँ रहते के स्मशान वैष्णव आनंद यथाशंभु, भागवत कहता है वैष्णव आनंद यथाशंभु, कहीं रहते बस दुख के नीचे रहते अपने आनंद से कैलाश में थे, बस कहीं भी जाते बस कोई घर भी नहीं बनाया। एक बार पार्वती ने बहुत कुछ कहा कि देखो पतिदेव एक घर तो मकान तो बनाओ, हमारा एक मकान नहीं है, पुत्र जो हो गए पुत्रों को लेकर कैसे रहेंगे, ऐसे ही वो एकले थे तो अभी दो पुत्र हो गए हैं और फैमिली के रखने में थोड़ा थोड़ा घर बार बनाएंगे। शंकर जी बोले ठीक है, तो वहाँ बनाते बहुत सुंदर घर बनाए, एकदम प्योर गोल्ड के घर बन गया, हीरा लीलावती मानी के बहुत कुछ है उसमें, बहुत सुंदर एक घर बना दी, बहुत विशाल महल। पार्वती को खुश करने के लिए शंकर जी बनाए, लेकिन बनाने के बाद कहे कि पार्वती के कुछ ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा, ब्राह्मण घर प्रतिष्ठा करना, ब्राह्मण को दान देना देने से ब्राह्मण वैष्णव की सेवा नहीं करने से नहीं चले, तो उन्होंने कई ब्राह्मण वैष्णव बुलाया लेकिन मुख्य रूप में गर्गमुनि को इन्वाइट किया। आप गर्गमुनि आए तो लास्ट में जो दक्षिणा है दक्षिणा के रूप में देने के लिए जब वो सत्य कर ले जो कुछ मांगते हो मांग लो है, तो गर्गमुनि ने फिर क्या मांगा, सब कुछ दे दो तुम्हारे पास जो कुछ है सारे दे दो। तो इसे कहते फिर वो उनका वही से फिर घर बनाना स्टॉप हो गया है, वो चाहते थे तो और कुछ जो सकते नहीं कर सकते, लेकिन वो संत जी बोले कि नहीं ये हमारा भाग्य में नहीं, ये बनाना नहीं है, तुम कहने पर बार बार मैं बना लिया घर, लेकिन घर बनाना हमारा ठीक नहीं है, हमारा काम क्या है भगवान की भजन करना, बस भजन करते, लेकिन उनके भक्त तो महल में रहते, लेकिन वो जो बुद्धू है जो उनको केवल धन मांगता है, लेकिन उनको यदि मांगोगे शुद्ध भक्ति वो भी शुद्ध भक्ति दे सकते हैं। गोपिया लोग में प्रार्थना करते थे, कात्यायन की पूजन करते थे और वो उनको दूसरे कुछ मांगते थे, कात्यायनी महामाये महाजोगिनी अधीश्वरी नंद गोपोतंग देवी पति में कुरु ते मम, मेरा पति बना दो इनको, हमारा पति बना दो नंद गोपो लाला को है। और शंकर जी का मैंने ये प्रचेता लोग शंकर जी को प्रसन्न किए, मैंने बड़े अपने जो बीच में मिलजुल कर रहे भातृभाव मैंने एक साथ में रहे, लेकिन परस्पर में स्नेह भाव था, पिताजी के आदेश को पालन करते कोई झगड़ते नहीं, शांत भाव से रहते थे और भगवान की धुन में थे, इसको देखकर शंकर जी बड़े कृपालु हो गए हैं, वॉलंटियरली आ गए उनकी स्पिरिचुअल मास्टर बन गए और इनको भक्ति सिखाया, शुद्ध कृष्ण भक्ति सिखाया, रुद्रगीत गाने सिखाया। अब आप वही वैष्णवी वैष्णवानंद यथाशंभु, वैष्णवी में भी वही पार्वती महान है और उन्हीं की कृपा से महाप्रसाद खा रहे हैं, महाप्रसाद संसार में भी नहीं था, उन्हीं की कृपा से आया, किनकी कृपा से, पार्वती की कृपा से, वो दूसरा कहानी है। तो किस प्रकार पूरी नहीं पधार प्रसाद है, महाप्रसाद जगन्नाथ की महाप्रसाद कृष्ण पधार, विमला देवी बैठे पीछे है, विमला प्रसाद, विमला जी के प्रसाद खाकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के नाम रखे थे उनके पिताजी, क्या विमला प्रसाद। तो इस प्रकार परिवार देखिए उनकी, मैं कह रहा था कि उनके परिवार का किसे आचरण, शंकर जी बैठे तो उनके गले में सांप है, उनकी बाहन बैल है, पार्वती है तो वो सिंह वाहिनी है, बाघ शेर या सिंह बैठे बाहन के रूप में, अरे एक दूसरे को खाने दोनों दोनों मुख करके बैठे, शंकर पार्वती बैठे, शंकर जी के चरण में बैल बैठा और पार्वती के चरण में सिंह बैठे, एक दूसरे को खाना खाना खाने का है, लेकिन खा रहा कोई किसको, कोई शत्रुता नहीं, बड़े मित्र भाव से बैठे। और इसे उनके पुत्र है, एक पुत्र गणेश की बहन क्या है, चूहा, शंकर जी गले में सांप उसका खाता है, किसको खाता है, चूहा को खाता है, उन्हीं खा बस संत है, सांप है लेकिन इधर गाओ, दूसरे लड़का का बहन है कौन, मयूर, मयूर उसको खाने वाला है, किसको, सांप को खा रहा हो, बड़े शांत भाव से ऐसे परिवार में सब विरुद्धाभास होते हुए भी कितनी शांत में रहते, क्योंकि सारे कृष्ण की भक्ति करते हैं, सभी कृष्ण भक्त होने के कारण उनकी हिंसा भाव को छोड़ दिए, बस सभी हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे
राम राम हरे हरे। तो घर में रहकर आप भी यदि सब वैष्णव बनोगे इस प्रकार है निष्किंचन वैष्णव, घर में रहकर भी निमित्त सोचो, ये घर आपने मत सोचो, घर आपके नहीं है, घर किसका है? कृष्ण का। कितने दिन रहोगे घर में? मानस देह देह जो किछ उमर अर्पिलु तोया पदे नंद किशोर, मैं सब कुछ आपके चरण में अर्पण कर दिया, मेरा कुछ नहीं प्रभु, ये सब कुछ आपका है, हैं? ये भावना तो अपना ही है। गृहस्थ जीवन में होकर रहने पर समझना चाहिए कि घर जो कुछ संपत्ति मुझे मिला है ये सब कृष्ण का ही है, मैं भी कृष्ण की दास हूं, मेरे पत्नी भी कृष्ण की दासी है, ये पुत्र सब जो बच्चे सब है ये भी कृष्ण की सेवक है, हैं? ये सारे जीवात्मा है। इसी दृष्टि से देखिए, दैहिक शरीर की दृष्टि से नहीं, ये संबंध केवल ड्रामा पार्टी बना हुआ है, कितना दिन रहोगे संसार में? ड्रामा में एक्टिंग करके जो जो जब जिसका एक्टिंग खत्म हो गया वो जाएगा ऊपर, हैं? जिसकी एक्टिंग खत्म हो गया ऊपर जाएगा, तो कोई रुक सकेगा इसको? नहीं रुकेगा। तो इसलिए मोह को संसार में रहकर भी ये मोह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, हैं? महाराज चित्रकेतु का मोह कट गया जब उनके पुत्र ने कहा कि तुम कौन सा मेरे बाप है, पुत्र 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 रो रहे थे, लेकिन वो उसकी डेथ हो गया तो बहुत रोने लगा, रो रहे थे उस सबको पकड़ के, लेकिन वो नारद जी ने कृपा की थोड़ा उसको जीवित करा दिए, तो कहा तुम कौन सा बाप है, हैं? किस जन्म का बाप है? मैं तो इसे कितने जन्म आ गया और कितने बाप को ग्रहण किया हूं, कितने बाप मेरे हैं, अभी तुम मेरे बाप बना है, कभी मैं भी तुम्हारा बाप था किसी दिन जन्म में, तो शास्त्र समझी है। और इसलिए जो रोल हमको दिया गया है उसी रोल को केवल निभाना है, किसी परिवार में रहते हम किसके पिताजी बने माताजी बने, अब जो हमको जो रोल करना है उसको परफेक्ट करना है, जो कर्तव्य हमारा है उसकी निभाना, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखना संसार में। तो इसी प्रकार कोई आश्रम में हम रहते तो इसको निभा सकते, सच्चे गृहस्थ को गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहस्थ के नियम को पालन करें, गृहस्थ लोगों को नियम पालन करना वाला कठिन है कड़ी युग में, है कि नहीं? कितने परसेंट दान कर देना चाहिए इनकम का ग्रस्तों, कितने का दान करना चाहिए? 50%। कोई देने के लिए तैयार है कोई ग्रस्त? जितनी इनकम है उसकी 50% दान कर देना, और दे देने के भगवान की सेवा में ब्राह्मण वैश्व की सेवा में 50% दे देना, 25% फिर आपके परिवार वर्ग को जो इनकम का 25% में फैमिली चलाना, और 25% इमरजेंसी के लिए रखना, अगर आपने भविष्य में कुछ आपका जो कर्तव्य है तो बैंक बैलेंस डिपोजिट 25 इनकम के 25% बैंक में रखना, 25% में परिवार को चलाना, 50% कुंज बिहारी के दे देना है, सॉरी वहां पर राशि बिहारी या जो जहां पर जुड़े हुए हैं गोपीनाथ कहीं भी दे, 50% ये कह रहे शास्त्र, 50% गृहस्थ को दान में देना, कोई देने के लिए तैयार है? कोई तैयार नहीं? प्रभुपाद जी जब थे तो ये कड़क नियम चलाते थे, उन्होंने वृंदावन में हमारे प्रेसिडेंट थे उस समय, प्रभुपाद जी के समय में धनंजय प्रभु जान प्रभुपाद जी से तो प्रेसिडेंट थे, वो 5,000 रुपये लेते थे अपने मेंटेनेंस उस समय का, और गेस्ट हाउस में कमरे लेके रखे थे, प्रभुपाद जी ने आए थे कि तो सुने कि ये 5,000 रुपये मेंटेनेंस ले रहे हैं और गेस्ट हाउस में कमरा लेके रखे, तो अपने बोला है, बोले कि आपको कौन बोला पैसा लेने के लिए 5,000 रुपया और कमरा गेस्ट हाउस में, ये नहीं तुम ग्राहक से हो, आपने को अपने मेंटेन करो और 50% इनकम का मंदिर में दो, हैं? तो कहीं मैं कहाँ से क्या करूँ पैसे, मेरे इतनी दिन में तो पूरा सेवा में लगाऊ, नहीं गेस्ट हाउस का कमरे पहले छोड़ो बाहर में कमरा लेके रहो रेंट लेके, हैं? वो कहते थे हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो विदेश से मैंने कहाँ से आए थे, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड से आए, तो उनको पता नहीं, इनको प्रभुपाद जी कहे तो उनको बाहर देख रहना पड़ेगा, और कुआं से पानी उठाते, उनकी पत्नी ने बकेट डाल दिया पानी उठाने के लिए, उसको उठाने का जब पता नहीं है, वो रस्सी हाथ से निकल गई और डूब गई, अंदर बैठ कर रो रही थी, उधर आस पास कोई ब्रजवासी देखे, फिर आकर उसको कैसे निकालना है, उसको निकाले हैं रस्सी डाल कंटा डाल के फिर उसको उठाए, लेकिन प्रभुपाद का आदेश पालन करो, प्रभुपाद ने पहले बहुत डांटा बोला कि बंद करना पैसा लेना, लेकिन बाद में फिर बहुत बोला है और बहुत प्रेम से उनको सिखाए कैसे बिजनेस करना उनको बताया इंश्योरेंस के बिजनेस कैसे करना, बेटी के लिए गहना कैसे बनाना, कैसे ड्रेस बनाना, और इसको विदेश में कंट्री में कैसे सप्लाई करना, अन्य इस्कॉन मंदिर में देना, और जो इनकम होगा 50% कृष्ण बलराम की सेवा में देना। और वो कहते थे कि हम जब प्रभुपाद के निर्देशों में फॉलो किए हैं हम बड़े खुश में थे, मैंने बड़े हर्षित हो गए, जब से हमको मेंटेनेंस 5000 रुपया, हमारे पास में 25000 रुपया रहने लगा महीना में इनकम। इसलिए गृहस्थ को ऐसे ही गुरु के आदेश शास्त्र के निर्देशन है, फॉलो करना बड़ा कठिन है लेकिन ये निर्देश है गृहस्थों के लिए, शास्त्र के निर्देश हैं। गृहस्थों को महाराज वंती के उपाख्यान नवोत्कर में ही आएगा महाराज वंती, और उनके उपाख्यान में देखें गृहस्थों को कैसे पालन करते थे, लास्ट तक परीक्षा के ऊपर सारे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, व्रत रखे 40 दिन का, बाद में वो व्रत तोड़ने जा हुआ परीक्षा ले रहे थे वो केस, लास्ट तक अंतिम जो अंतिम था कि पानी का ग्लास वो भी दे। इस प्रकार गृहस्थों के लिए गृहस्थ तीन ही आश्रम को मेंटेन करता है, ये अन्य जो तीन आश्रम किससे चलते हैं, कौन इनको मेंटेन करेगा, गृहस्थ ही मेंटेन करेगा, ब्रह्मचारी बानप्रस्थ, आजकल बानप्रस्थ कोई नहीं, जंगल में कहाँ जाएंगे, फल मूल कुछ नहीं है कहाँ खा के रहेंगे, ये सभी और सन्यासी ये तीनों ही गृहस्थ के द्वारा मेंटेन किया जाते हैं। प्रभुपाद जी के पिताजी गौरवम दे क्या करते थे, गृहस्थ से आदर्श गृहस्थ जीवन अभी प्रैक्टिकल देख सकते हैं, उन क्या करते थे, कपड़े की दुकान में भी उनके साथ चूहा रहते थे, खिलाते थे, गृहस्थ का कर्तव्य केवल मनुष्य में नहीं पशु पक्षियों को भी पोषण करना उनका भी कर्तव्य है, पशु पक्षियों को भी खिलाना है, तो चूहा उनके कपड़े की दुकान में रहते थे, और दूसरे व्यवसायी लोग देखकर हैरान हो जाते थे, क्या है देखती है को चूहा को रखता है, चूहा को भगाता नहीं थे, दूसरे लोग जनता में पकड़ के पकड़ते कोई 20 दे देता था खाने के साथ, वो मारने के लिए चूहा को पकड़ने के लिए, प्रभुपाद जी पिताजी चूहा के लिए भी रखते थे, एक बर्तन लाते थे उसमें टुकड़े टुकड़े रोटी करके दूध डाल के डाओ आओ 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 सारे चूहा आते थे खाते थे, खा के फिर अपने अपने जाके चले जाते, एक भी कपड़ा उनकी काटते नहीं, दुकान बंद करके दोपहर को आएंगे तो डेली 8-10 साधु लेकर चलते थे साथ में, अकेले नहीं, साधु पता है ये डेली साधु भोजन देगा घर में लेके जाए, तो इसलिए कुछ लोग बैठ जाते थे कि लाल कपड़े वाले हैं और इनको लेके आते, उनकी पत्नी रजनी देवी को पता था कि हमारे घर में तो सिर्फ 3-4 लोग हैं खाने वाले, लेकिन डेली 20 लोग का खाना बना पड़ेगा क्योंकि ये लेके आएंगे कुछ लोग इधर, नहीं तो भूखे रहेंगे, सबको खिला के वो भूखे रह जाएंगे। प्रभुपा जी पिताजी गौर मंदिर प्रत्येक दिन लाते, साधु 8-10 बैठते थे, उनको खिलाते थे और उनके लड़का को लाते थे, अभय को बोले अभय प्रणाम करो सबको, है इसलिए प्रभुपा जी ने बात में जो कॉलेज के जीवन कहते थे, साधु देख देख परेशान हो चुका हमारे घर में, साधु देखना नहीं मुझे, ये डेली प्रणाम करे और बोले सबको प्रणाम करो सब साधु, और कहते थे कि मेरे लड़का को आशीर्वाद दो, जैसे राधारानी का भक्त बन जाए, राधारानी के भक्त बनेगा और भागवत का प्रचार पूरा विश्व में करेगा। तो साधुओं की भोजन कर, तो साधुओं की सेवा करना एक गृहस्थ का काम है, अकेले खाना नहीं है, जो खाद्य बनाता है तो कृष्ण को अर्पण करें और ब्राह्मण विष्णु को भोजन करा के फिर खाए, नहीं तो ते भुजनते अधम पापा जे पच्यंते आत्म कारणार्थ, आपने के लिए कुकिंग करता खाता है, क्या खाता है वो पाप खाता है, यज्ञोचिष्ट शिव संत मुच्यते यज्ञपति भगवान विष्णु को खिलाओ, फिर ब्राह्मण वैष्णव की सेवा करो, फिर गृहस्थ जीवन सार्थक होगा, आशीर्वाद लो ब्रह्म वैष्णव से। प्रभुपाद जी पिताजी ऐसे आशीर्वाद मांगते मांगते उसमें से कोई ना कोई संत था, प्रभुपाद जी राधारानी की भक्त बने, पूरा दुनिया में भागवत के प्रचार किए, जैसे गृहस्थ के कर्तव्य है गृहस्थ धर्म को कैसे निभाना, ये भी शास्त्र के आधार पर, यदि शास्त्र के आधार पर गृहस्थ जीवन को सही कोई निभाता है तो फिर उसकी जीवन धन्य है। कोई भी आश्रम में रहे ब्रह्मचारी गृहस्थ बालकृष्ण संन्यास, लेकिन अपने आश्रम के नियम को ठीक से पालन करें हैं, लेकिन इस कलि युग में बड़ा कठिन है आश्रम के नियम को, प्रत्येक आश्रम में रहकर नियम को पालन करना है बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी युग धर्म तो कम से कम पालन कर सकते, क्या गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो इसलिए, लेकिन फिर भी अपने आश्रम के नियम को इसको पालन करने के लिए यथासंभव पर हम प्रयास करना चाहिए। हैं ब्रह्मचारी है उसको कैसे स्त्रियों से दूर रहना, गुरु निर्देशन में सुबह शाम भिक्षा मांगना। हैं ब्रह्मचारी गुरुकुले वचन दान्तो पुरोहितम, गुरु के हित के लिए को गुरु के आश्रम में रहकर सारी सेवा संपूर्ण जीवन को समर्पित गुरु की सेवा में करना, गुरु के आदेश उसके जीवन का लक्ष्य है, सब कुछ है। गुरु आदेश कभी उल्लंघन नहीं, कोई भी कोई आश्रम में कोई उल्लंघन नहीं करना चाहिए घर से ब्रह्मचर्य कोई, लेकिन ब्रह्मचारी विशेष उसमें गुरु के घर में रहता है, उसकी घर बार नहीं रहता है ब्रह्मचारी, और फ्लैट कहीं खरीद के रखेगा तो ब्रह्मचारी नहीं है, है? ब्रह्मचारी गुरु के घर में रहेगा। ब्रह्मचारी गुरुकुले वचन दान्तो पुरोहितम, आचरण दासवत नीच, गुरु सुदृढ़ सुहृद, गुरु को अपने दृढ़ भाव से अपने सुहृद मित्र एकमात्र जानते हुए उनके निर्देशन को कड़ाई से पालन करें। गुरु के आश्रम में रहकर गुरु निर्देशन पालन करता, जो भिक्षा मांगेगा लाकर गुरु को देगा। ब्रह्मचारी बैलेंस नहीं रखेगा, बैंक बैलेंस नहीं, बैंक डिपॉजिट कर रखेगा तो वो ब्रह्मचारी नहीं है। पैसा आस्ते आस्ते होगा तो फिर उसकी मन इंद्रिय विचलित होंगे, फिर वो लाल कपड़े नहीं रहेगा। है सिर्फ संचय करना गृहस्थ का नहीं, सर ब्रह्मचारी का काम नहीं है, ब्रह्मचारी समर्पित रहेगा। उसी प्रकार नारद जी ने आगे भी सातम स्कंद में बारह अध्याय ब्रह्मचारी के बारे में, चौथम अध्याय विशेष रूप में गृहस्थ को चर्चा करते हैं। वासुदेव अर्पण साक्षात, सब कुछ वासुदेव में वो भी अर्पण करना चाहिए। कौन गृहस्थ, गृहस्थ को भी जानना चाहिए सब कुछ वासुदेव के हैं, मेरा नहीं, मैं निमित्त हूँ, मैं मेरा को हटाना, किसी भी आश्रम ये को हटाना, मैं मेरा ये इसको हटाना चाहिए। और गुरु निर्देशन को ब्रह्मचारी भी पालन करना चाहिए और गृहस्थ आश्रम में रहकर भी गृहस्थ को भी पालन करना जरूरी है। गृहस्थ आध्यात्मिक जीवन स्वीकार किया, गुरु से प्रवेश किया, गुरु स्वीकार किया तो किसी भी आश्रम के लिए किसी भी अपराध न करें, नाम अपराध, गुरु के आदेश को अवज्ञा करना और साधारण समझना, इसलिए गुरु निर्देशन को पालन करें। तो इसी प्रकार हम यदि ठीक ठीक से शास्त्र के निर्देशन को पालन करेंगे तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। हम जो वैष्णव बने हैं भक्ति करने के लिए आए हैं तो बड़ा हमारे लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर विशेष रूप में रुचि के मुनि ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए महाराज गादी के पास में आए और इनको कहे कि आपकी जो कन्या मुझे दान में दो। कहीं से सुने होंगे कन्या के कुछ गुण रूपों के बारे में उस समय, तो वो आकर इनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते कि आपकी कन्या मुझे भिक्षा रूप में दो, इसको दो, मैं इसको शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सीधे अप्रोच करते थे प्राचीन काल में ऐसे ही ब्राह्मण बोलते थे पिताजी को, लेकिन इन्होंने कहा तो राजा ने देखी बोले ऋषि है, ब्राह्मण है, दान मांग रहा है और मैं गृहस्थ नहीं दूंगा तो अपराध भी होगा। लेकिन कुछ टाले, उसको टालना चाहते थे, सोचते थे कि अयोग्य है ये, मेरे पत्नी ने सॉरी मेरे जो कन्या इतनी सुंदरी है, गुणवती है, रूपवती है, और ये कहाँ से जंगल में रहने वाला तपस्या तपस्वी है ये कहाँ से देगा, लेकिन जो ये कहाँ से मेरे लड़की को लड़की मेंटेन करेगा अपने। लेकिन जो सही राजा होते जानते, स्वयंभू मनु जानते थे किनके बारे में, कर्दमुनि, कर्दमुनि भी जो कि थे जंगल में रहते थे, स्वयंभू मनु दे दिया अपने कन्या अपने पुत्री को, किसको, देवहूति को, स्वयं जा कर दिए, स्वयं जाकर कर्दमुनि को दान दिए। यदि वो जंगल में रहते थे मुनि ऐसा ही बैरागी थे, लेकिन यहाँ पर ये मांगने के लिए आए, लेकिन ये कह रहे नहीं, सोचे कि ये अयोग्य है, ये कैसे मेरा पुत्र को साझा साझी करेगा, इसलिए वो बहाना करके कुछ बहाना के आव पर उन्होंने कहे कि ठीक है मेरे पुत्री को तो दूंगा आपको, आपको शादी देने के लिए कुछ जो कुछ चाहिए, मुझे गेहज चाहिए, उल्टे शुल्क चाहिए, शुल्क वही देता है जो कन्या दान करता है वही देता है कन्या के साथ, लेकिन इन्होंने कहते कि नहीं मुझे शुल्क चाहिए, क्या शुल्क चाहिए ना, श्याम कन्या नांग ऐसे ही घोड़े मुझे दीजिए जिनकी कलर जिनकी ज्योति चंद्रवत शाम, उज्ज्वल चंद्रमा के साथ पूर्ण चंद्रमा के समान उनके शरीर की कांति बड़ा उज्ज्वल हो और उनके एक एक कान श्याम वर्ण की हो, सीधे कान बा उल्टे कान कैसे भी हो श्याम वर्ण के एक कान रहे, ऐसे ही सहस्रन दियतान 1000 घोड़े मुझे ला कहीं से दान में दे पाओगे तो फिर मेरे कन्या को प्राप्त करोगे, क्योंकि हम कुशी का वयम, मैं कुशी कुश महाराज कुश की वंशज हूँ। और हम लोग क्षेत्रीय, वर्ण अलग है। जब वर्ण अलग अलग होता तो उनमें से जो शादी होता है, जो बच्चे जन्म होते हैं, उनको क्या कहते हैं? वर्ण संकर कहते हैं। लेकिन वर्ण संकर दो प्रकार के होते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। जब प्रतिलोम होता है, जब पिताजी की वर्ण हायर होता है और माताजी की वर्ण थोड़ा नीचे होता है कन्या की, तो इसको अनुलोम कहते हैं। ये वैदिक संस्कृति में सम्मत है, ऐसे ही शादी करना। लेकिन प्रतिलोम जब हो जाते हैं, माताजी ब्राह्मणी, ब्राह्मण की वर्ण होता है, पिताजी क्षत्रिय होता, तो वो अनुमोदन नहीं है प्रतिलोम। तो लेकिन यहाँ पर ये ठीक है, अनुलोम है, क्योंकि वो ब्राह्मण है और जो उसको चाहते वो क्षत्रिय पुत्री है। लेकिन फिर भी उनके पिताजी अनुपरीक्षा करना चाहते, मैंने कैसे ही ठाकुर तुम्हें देना नहीं चाहते थे लड़की को उनकी शादी, लेकिन इसलिए कहे। तो आगे फिर पढ़ेंगे वो कैसे उनको प्राप्त कर लिए। फिर वरुण के पास जाएंगे और 100 घोड़े लेके आ जाएंगे। कौन रुचि के मन वो सुंदर आगे कहानी, जैसे प्रभुपाल तात्पर्य खेल है, गाधी का पुत्र विश्वामित्र बने, वो कैसे बनेगा अगले श्लोक में इसकी आलोचना की गई है। रुचि के मुनि भी ब्रह्मर्षि थे और उनकी जब शादी हो गया कन्या के, मैंने इनके साथ सत्यवती के साथ, सत्यवती की माँ भी जानती थी कि ये बड़े तप मने तेजस्वी और सिद्ध योगी है, तो उन्होंने भी उनके पास में कामना की कि मेरे को भी एक पुत्र मिल जाए। और कन्या भी प्राप्त, मैंने सत्यवती भी चाहती थी पुत्रवती होने, इसलिए उसी के मन ने यज्ञ करके 2 चरु बनाए, एक उनकी माँ के लिए, सास के लिए, और इनके उनके उनके पत्नी के लिए। लेकिन उनके पत्नी ने, जो रानी ने सोची कि ये जो पति होता है अपने क्या पत्नी के प्रति विशेष स्नेह रखती है, तो इसलिए जो मेरे पुत्री के लिए जो चरु बनाए ये ऋषि, जरूर इसका कुछ महत्व, ज्यादा महत्व है। तो इसलिए वो जो ऋषि की मुनि ने चरु बनाकर फिर चले गए स्नान करने के लिए गंगा में, तो इन्होंने कहे कि, तो माँ ने कहा कि तेरा चरु मुझे दे और मेरा तू ले। और माँ कह रही तो बेटी दे दी है? लेकिन उन्होंने इस प्रकार चरु बनाए थे, जो चरु उनके उनके लिए था कि महाराज गाधी की पत्नी के व उनके सास का, जो ऋषि मुनि के सास के लिए था, तो वो एक चरु बना हुआ था कि उसको खाने से ब्राह्मण स्वभाव वाले पुत्र जन्म होगा, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव वाले पुत्र जन्म होगा। तो क्षत्रिय थे महाराज गाधी, और उन्होंने अपने पत्नी के लिए ऐसे ही चरु बनाई थी कि उसको खाने से फिर क्या होगा, ब्राह्मण स्वभाव वाले पुत्र जन्म होगा। लेकिन जो एक्सचेंज हो गया फिर उल्टे हो गए। इसकी चर्चा आगे श्लोक में की जाती है, आगे फिर आलोचना करेंगे किस प्रकार वो फिर ऋषि मुनि आकर जो सुने, उन्होंने बड़े क्रोधित हुए, उनको कहे कि तुम्हारा पुत्र जो बहुत बड़े घोर क्षत्रिय बनेगा, हैं, बहुत मार धर करेगा, लोगों को मार बहुत मर करेगा, ये करेगा बहुत कुछ। जब क्रोधित, तो उन्होंने शांत करे उसको, बड़े मीठे बात कही कि ठीक है, तुम्हारा पुत्र नहीं होगा तो उसका पुत्र होगा। फिर ऋषि मुनि के पुत्र फिर जमदग्नि हुए, जमदग्नि की पुत्री कौन, नए पुत्र कौन बने, परशुराम। सारे जगत को 3 बार लिखित यदि ब्राह्मण कुल में हुए तब भी, और महाराज गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र। तो इसके वर्णन आगे श्लोकों में डिटेल की जाएगी। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न है? हाँ, उनके इतिहास कुछ तो ऐसा नहीं, मैं कुछ जानता नहीं उनके इतिहास के, लेकिन उनके मन में शादी करने की इच्छा हो गई। जोगी थे, कई सालों से तपस्या करते थे, लेकिन उनके मन में इच्छा हो गई कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का। ऐसे सभी लोग, कुछ लोग के मन में ऐसा ही इच्छा उत्पन्न होता है, कुछ ना कुछ प्रारब्ध रहता है, अजानबे क्यों इच्छा कपन, वो बेचे के प्रति क्यों प्रकट हो गया, नहीं वो इसका आसक्त हो गया। उसका इतिहास बता जाता पुराण में कि अजामबेड़े वो पूर्व जन्म में जो ब्रह्मचारी था, और एक नदी में स्नान करते करते इतने ज्यादा स्नान किया उसको ठहरना नहीं आता, और पानी खा गए, बेहोश होकर नीचे अचेतन होकर मृत शरीर सबके समान पड़ा रहा, तो चेतना नहीं आ रहा था, बहुत प्रयास किए। और सब गुरुजन लोग ने कुछ कि माँ तो पुत्र का माँ और कई लोग सब बोले कि इसको, वो लड़की थी उसी गाँव की, उसको कहे कि तुझे डॉक्टर कहा कि देखो ये लड़की यदि उसके शरीर को स्पर्श करे, जवान लड़का है, उसके अंग प्रत्यंग को स्पर्श करने से हो सकता है उसकी सेंसेस उत्तेजित उन्हें वो उठ सकता है। इसलिए स्कूल का एक कहे कि तुम थोड़ा इसके शरीर में हाथ तको तो सिर में ऐसे तो आकर कहने पर उनकी माता पिता कहने पर गुरुजन कहने पर ऐसे की तो चेतना आ गए। लेकिन चेतना जब आ गया तो कहे कि तुम मैं ब्रह्मचारी हूँ, तुम एक स्त्री मेरे शरीर को क्यों स्पर्श किया, मैं अभिशाप देता हूँ तू वेश्यावृत्ति करो, तू वेश्या बन जाओ, इस जन्म नहीं होगा तो अगला जन्म बनो। तो कहे मेरा क्या दोष है बिना कारण से, मैं तो तुम्हारे गुरुजन का पिता माता पिता की बात सुनकर तुम्हारे शरीर में ऐसे ही तुमको स्पर्श किया, तुम बिना कारण से मुझे अभिशाप दिया, यदि मैं वेश्या बन गया तो तू मेरे प्रति आसक्त रहेगा, मैं आसक्त हो मेरे को। तो कुछ कारण शब्द में कुछ कहानी इतिहास हो सके, नहीं इसके इतिहास क्या मैं जानता नहीं, पर थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। और उसी प्रकार भी बिल्लो मंगल ठाकुर, इनकी भी पूर्वजन्म कहा जाता है, बिल्लो मंगल ठाकुर वो क्या चिंतामणि वेश्य के प्रति क्यों आसक्त होता है, तो उसके भी कहानी है। वो पहले जन्म में भी सन्यासी थे, लेकिन कुछ सन्यासी होते हुए भी स्मशान में बैठे रहे, मैंने बैठ कर अपने भजन करते, लेकिन एक बार देखी कि राजपुत्री मर गया राजा का लड़की, और राजा ने लेकर वो सारे लड़की के शरीर में सारे गहने सब सोना हीरा नीला मती सब गहना के साथ उसको जिगाड़ देकर जमीन के अंदर समा दे दिया। तो वो हंस रहे थे माया वैष्णव ने, बोले क्या देखो ये मर गया, इसका सब के ऊपर इतना गहना दे दिया, इसको तो ब्राह्मण वैष्णव को दान करने से क्या, तो ये सोना को बुलाकर बेच के कुछ अन्न भोजन बाग कुछ इनको दान ब्राह्मण वैष्णव को दान देने से आता रहेगा, तो इसलिए वो चला जाएगा तो सबको निकाल कर नहीं खुदाई करके जमीन को सबको सबसे फिर ग्रहणा से वो निकाल देना है। ग्रहण करे वो प्रतात्मा था उसके ऊपर आसक्त था शरीर में, ये कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको यदि सोना चाहिए धन चाहिए जाओ मेरे पिताजी को बोलो, वो जो खटिया मेरे में सो रहा था खटिया के नीचे सोने की इच्छा था वो तुमको दे देगा, मुझे किस्टर मत करो। फिर वो रख दिया, फिर ले जाए वहाँ से ले आया चार सोना ईटा को, फिर बेच कर को तो कुछ दान धर्म किया है, लेकिन बाद में फिर कई दिनों बचने बोले अभी तो प्रतात्मा छोड़ के चला गया होगा सर, तो अभी से उसको निकाल देते, दोबारा फिर गया उस जात को खुदाई किया और पूरा नंगे शरीर स्त्री का जो देखा तो प्रतात्मा ने अभिशाप दिया सन्यासी होकर नंगे स्त्री का शरीर देखा है, तो इसलिए तुम फिर आसक्त रहोगे अगला जन्म में नेक्स्ट जन्म में स्त्री के प्रति मेरे शरीर के प्रति, वही अरे चिंतामणि वेश्या बन के आए तो फिर आसक्त रहे। तो कहानियाँ कुछ ना कुछ इसके प्रारंभ कुछ कहानियाँ रहता है, है? तो कैसे व्यक्ति संसार में फंसता है, संसार में फंस जाते हैं, ऐसे ही गृहस्थ जीवन सृष्टि के प्रारंभ से निंदनीय नहीं है गृहस्थ जीवन, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहकर गृहस्थ धर्म को यदि फॉलो कर पाए हैं, इस कलयुग विशेष रूप से कलयुग में बड़ा कठिन है, सादा जीवन उच्चा विचार, ब्रह्मचर्य का कोई चिंतन नहीं, घर मंदिर में रहा और यहाँ पर टाइम पर भोजन, उसको मारा चिंता नहीं पड़ता पैसा कहाँ से आता है पैसा कहाँ से क्या करेगा, बस आपने नियम पालन किया गुरु निर्देशन में जब किया भागवत का अध्ययन किया 9 बजे प्रसाद रेडी है उसके लिए, प्रसाद खाएगा फिर अध्ययन करेगा फिर प्रचार करेगा, बस उसकी गुरु निर्देशन में कोई समस्या नहीं, और गृहस्थ कितने समस्या, गृहस्थ जाएगा धन कहाँ मिलेगा है, कहाँ धन मिलेगा परिवार कैसे चलाएगा चिंतन से के पाओ। मैं प्रवचन सुनता था एक व्यक्ति ने कहा था कि नहीं आजकल जो हस्बैंड होते हैं प्रकृति में हंसता हुआ बैन है, पत्नी के पीछे चलते बस को कहीं भी स्टेशन में जाता होगा देखोगे पति पत्नी दोनों हैं, और लेकिन पत्नी के वाला वो पकड़ी होगी क्या बहन के बैग पकड़े चलते पत्ते वो जो उसके पति होगा तो बच्चे को ऐसा पकड़ते होगा फिर लगेज को एक को खींचते खींचके ज़्यादा मुश्किल से जाता होगा, लेकिन कृष्ण भावना भावी भावना में ऐसा नहीं होता है, कृष्ण भावना स्त्रियाँ भी समझती है पति की पति उनके व्यवहार ठीक रहता है, लेकिन साधारण भौतिक जगत में ऐसा ही होता है। कृष्ण भावना में जब हम आए तो कोई भी आश्रम में रहे, लेकिन आश्रम में आने के बाद फिर आश्रम के नियम को फॉलो करें, परिवार नहीं चला पाया तो घर छोड़ के वाम बैरागी बन जाएंगे ये अनुमोदन नहीं किया गया है, ये नहीं परिवार शादी कर लिया पत्नी स्वीकार कर लिया अभी धन कमाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है पैसे में परिवार चलाने में बच्चे हो गए स्कूल मेंटेन गए तो इससे खर्चा नहीं तो अभी मैं बैरागी बन जाऊंगा ये रिकमेंड नहीं है, है? अच्छे खाने में अभी तक इच्छा है अच्छे अच्छे खाना स्त्री संभोग की इच्छा भी है, कामनाएं नष्ट नहीं हुआ है, फिर नकली वैराग्य बनने को नहीं रखता है। हमें इसकन में देखते हैं कई लोग आते हैं, आकर इसकन जैन करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं। हम वृंदावन में देखते हैं कई लोग घर छोड़ के आ जाते हैं और पत्नी बच्चा सब छोड़ के पूरा बैरागी फिर आके जैन करते, फिर यहाँ आकर फिर कई साल के बाद, दो चार साल के बाद फिर दूसरे विदेशी लड़की लेकर फिर शादी करके कहीं भाग जाता है, इंग्लैंड, लंदन व अमेरिका कहीं भाग जाता है। ऐसा अनुमोदन नहीं है। ग्रस्त है तो ग्रस्त की नियम को पालन करें, पर अपने जमींदारी को भी निभाए। यदि सच्चा वैराग्य आया व गुरु के निर्देशन है तो फॉलो करें। प्रभुपाद जी ग्रस्त आश्रम में थे लेकिन वो त्यागना नहीं चाहते थे, सोचते थे कि बात उनके गुरु जी ने 1945 में एक बार स्वप्न में आए कहके, अभय अभी संन्यास लेना है तो 4 महीने निकलो है। तो प्रभुपाद जी ने सोचते थे कि इतने बड़े परिवार हैं, मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, इनके सारे 5 बच्चे, 2 लड़के 2 लड़का 3 लड़की, इनके सब शादी कराना है, ये कितनी जमींदारी में कैसे भी संन्यास असंभव है। फिर 2 साल के बाद फिर आ गए, फिर 3 बार आ गए है। तो उनके गुरु जी बार बार आकर आदेश दिए, यानी कि प्रभुपाद में जमींदारी से मैंने ऐसे छोड़ के संन्यास नहीं, गुरु निर्देशन में सदगुरु आपको प्रोत्साहित करता है। तभी नहीं कि मेरे जमींदारी में चला नहीं पा रहा हूँ इसलिए परिवार को संभाल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए अभी इसकन में कड़क नियम है, कई गृहस्थ को संन्यास लेना है उसके पत्री का साइन चाहिए, नो ऑब्जेक्शन। पत्री ने साइन नहीं करेगी तो संन्यास नहीं मिलने वाला कई गृहस्थ इसकन में। अपने जमींदार को ठीक से निभाना चाहिए। इस प्रकार के ब्रह्मचारी को भी ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर अपने नियम को फॉलो करें, गुरु के निर्देशन में खर गुरु घर में रहकर जो कुछ लाया गुरु को दें, गुरु की पसंद के लिए फुल डेडिकेशन के लिए इसको मौका मिला, भाग्यवान है कौन। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। दंतराज श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।